एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। ये हमें अपने ही दिमाग के अंदर झांकने का एक नया नजरिया देती है।
हाँ।
किताब है रे कुर्जविल की हाउ टू क्रिएट अ माइंड द सीक्रेट ऑफ ह्यूमन थॉट रिवील्ड।
बिल्कुल। और देखिए, आज का जो जमाना है, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेजी से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रहा है।
हाँ, हर तरफ एआई की ही बात है।
सही कहा। तो ऐसे में ये किताब और भी जरूरी हो जाती है। ये बहुत बुनियादी सवाल उठाती है कि क्या हम इंसान की तरह सोचने वाली मशीन बना सकते हैं? क्या हमारी चेतना, हमारा जो होना है, वो सिर्फ एक एल्गोरिदम है?
सवाल ही इतने गहरे हैं कि इस सोचने पर मजबूर कर देते हैं, और कुर्जविल का जवाब एक तरह से हाँ में है।
हाँ, वो काफी आश्वस्त लगते हैं।
और वो इसके लिए एक थ्योरी देते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन थ्योरी ऑफ माइंड, मतलब PRTM, जिसका मतलब है कि हमारा दिमाग जो है वो असल में पैटर्न पहचानने में माहिर है, और शायद यही उसकी सोच का राज है।
बिल्कुल। आज हम इसी राज को, इसी थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे।
हाँ, लेकिन किताब में गोता लगाने से पहले जरा लेखक के बारे में जान लें, रे कुर्जविल।
हाँ जरूर, ये जानना जरूरी है कि ये विचार आ कहाँ से रहे हैं।
तो रे कुर्जविल कोई सिर्फ लेखक नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
वो एक बहुत जाने माने आविष्कारक हैं, भविष्यवादी हैं, मतलब फ्यूचरिस्ट जिन्हें कहते हैं, और आजकल तो गूगल में इंजीनियरिंग डायरेक्टर हैं।
गूगल में? वाह।
हाँ, और वहाँ वो मशीन इंटेलिजेंस मतलब AI पर ही काम कर रहे हैं।
उनकी तकनीकी पकड़ तो जबरदस्त है। OCR मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन।
हाँ, जिससे कंप्यूटर छपा हुआ टेक्स्ट पढ़ पाता है, और टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच रिकॉग्निशन, इन सब में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। उन्हें अमेरिका का नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी भी मिला है, जो वहाँ का सबसे बड़ा सम्मान है टेक्नोलॉजी में।
बिल्कुल। और उनकी सोच सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाने तक नहीं रुकती, उनकी पिछली किताबें भी बहुत मशहूर हुई हैं, जैसे द एज ऑफ स्पिरिचुअल मशीन्स, द सिंगुलैरिटी इज नियर।
हाँ, मैंने सुना है उनके बारे में। वो भविष्य को लेकर बड़ी बोल्ड भविष्यवाणियां करते हैं।
हाँ, और उनका एक खास सिद्धांत है, लॉ ऑफ एक्सेलरेटिंग रिटर्न्स। इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी की तरक्की सीधी लाइन में नहीं बढ़ती, बल्कि तेज और तेज होती जाती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसे कहते हैं।
अच्छा, ये समझना इस किताब के लिए जरूरी होगा शायद।
बहुत जरूरी, क्योंकि इसी आधार पर वो भविष्य में AI के विकास की बात करते हैं। तो उनके पास AI बनाने का प्रैक्टिकल अनुभव भी है, कंप्यूटर साइंस की गहरी समझ है, और उन्होंने सालों तक न्यूरोसाइंस और फिलॉसफी भी पढ़ी है।
तो मतलब वो हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, उनके पास अनुभव और ज्ञान दोनों का आधार है। ये किताब उनके जीवन भर के काम का निचोड़ जैसी लगती है।
एकदम। तो चलिए अब किताब पर आते हैं। आखिर ये किताब है किस बारे में?
हाँ बताइए, सरल शब्दों में क्या है ये?
देखिए, सरल शब्दों में कहें तो ये एक तरह का नक्शा है। पहले इंसानी दिमाग कैसे सोचता है उसे समझो।
ठीक है।
और फिर उसी समझ के आधार पर एक कृत्रिम दिमाग, एक सोचने वाली मशीन बनाओ।
एक ब्लूप्रिंट जैसा।
बिल्कुल। और इसका जो सबसे बड़ा आइडिया है, जो आपने पहले भी कहा, वो है PRTM, पैटर्न रिकॉग्निशन थ्योरी ऑफ माइंड।
हाँ, पैटर्न पहचानना।
कुर्जविल कहते हैं कि हमारा जो सोचने वाला मेन हिस्सा है ना, नियोकॉर्टेक्स, दिमाग की बाहरी परत।
हाँ।
वो ऐसा नहीं है कि उसमें हजारों अलग अलग तरह के औजार हों, बल्कि उसमें करीब 30 करोड़, सोचिए, 30 करोड़।
30 करोड़।
हाँ, एक जैसे पैटर्न पहचानने वाले छोटे छोटे मॉड्यूल हैं। और कमाल की बात यह है कि वो सब एक ही मूल तरीके से, एक ही एल्गोरिथम पर काम करते हैं।
एक ही तरीके से, मतलब देखना, सुनना, सोचना, सब एक ही मशीन से।
उनका यही तर्क है। और ये सारे मॉड्यूल एक हायरार्की में, मतलब एक सीढ़ी नुमा व्यवस्था में सजे हैं।
अच्छा, तो किताब का लक्ष्य क्या है, क्या बनाना चाहते हैं वो?
लक्ष्य है दिमाग की रिवर्स इंजीनियरिंग करना। जैसे हम कोई मशीन खोलकर देखते हैं ना कि ये पुर्जा क्या करता है, वो कैसे जुड़ा है।
हाँ हाँ।
वैसे ही दिमाग को समझना और फिर उसकी नकल बनाना, एक ऐसी AI जो सिर्फ काम ना करे बल्कि सचमुच सोचे, सीखे, महसूस करे, मतलब सचेत हो, कॉन्शियस।
कॉन्शियस AI, ये तो बहुत बड़ी बात है।
बिल्कुल। तो ये किताब हमें एक सफर पर ले जाती है। शुरुआत होती है कुछ सोचने पर मजबूर करने वाले सवालों से, फिर दिमाग की बनावट, खासकर नियोकॉर्टेक्स की, फिर PRTM क्या है उसकी गहराई में जाते हैं, फिर इसे कंप्यूटर में कैसे उतारें उसके तरीके, और आखिर में वो बड़े सवाल, चेतना, फ्री विल, पहचान और इंसान मशीन का भविष्य।
चलिए को फिर इसके कुछ खास हिस्सों पर जरा और गहराई से बात करते हैं। शुरुआत में वो कुछ विचार प्रयोगों की बात करते हैं ना?
हाँ, थॉट एक्सपेरिमेंट्स, वो बड़े मजेदार हैं।
जैसे वो एक सवाल पूछते हैं, सोचिए अगर आपके दिमाग का एक एक न्यूरॉन
हाँ
धीरे धीरे करके एक इलेक्ट्रॉनिक चिप से बदल दिया जाए,
हाँ,
और वो चिप ठीक वही काम करे जो न्यूरॉन कर रहा था,
बिल्कुल वही काम,
तो जब सारे न्यूरॉन बदल जाएंगे क्या आप रहेंगे? आपकी चेतना, आपका जो अनुभव है वो वैसा ही रहेगा?
उफ, ये सवाल तो हिला देता है। इसे वो ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारी पहचान आखिर है किसमें, क्या इस शरीर में, इस हार्डवेयर में,
या फिर हमारे विचारों, यादों के पैटर्न में, हमारे सॉफ्टवेयर में।
बिल्कुल, कोड्सविल का झुकाव सॉफ्टवेयर की तरफ है। वो मानते हैं कि पहचान पैटर्न में है, और यही चीज आगे माइंड अपलोडिंग जैसे आइडियाज की नींव रखती है।
इसके बाद वो नियोकॉर्टेक्स पर आते हैं, दिमाग की बाहरी परत,
हाँ, जो हमारी ज्यादातर ऊंची सोच समझ के लिए जिम्मेदार है। यहाँ वो एक न्यूरोसाइंटिस्ट वर्नन माउंट कैसल के काम का जिक्र करते हैं।
अच्छा, उन्होंने क्या खोजा था?
माउंट कैसल ने पाया कि नियोकॉर्टेक्स की जो बनावट है वो चाहे देखने वाले हिस्से की हो, सुनने वाले की, या भाषा समझने वाले हिस्से की, वो आश्चर्यजनक रूप से एक जैसी है। मतलब एक ही तरह के छोटे छोटे वर्टिकल कॉलम्स, कॉर्टिकल कॉलम्स बार बार दोहराए जाते हैं।
अरे, मतलब अलग अलग काम के लिए अलग अलग डिजाइन नहीं?
नहीं, यही तो कमाल की बात है। और यहीं से कोड्सविल का आइडिया आता है कि अगर बनावट एक जैसी है तो शायद दिमाग अलग अलग काम के लिए एक ही मूल तरीका, एक ही एल्गोरिदम इस्तेमाल करता होगा।
वाह, और ये कितने मॉड्यूल बताए थे आपने? 30 करोड़?
हाँ, उनका अनुमान है कि करीब 30 करोड़ ऐसे पैटर्न पहचानने वाले मॉड्यूल हमारे नियोकॉर्टेक्स में हैं।
और ये हायरार्की में काम करते हैं, ये भी कहा था आपने?
बिल्कुल, हायरार्की का मतलब है परत दर परत। जैसे सबसे नीचे वाले मॉड्यूल्स बहुत सिंपल पैटर्न पहचानते हैं, मान लीजिए किसी तस्वीर में एक सीधी लाइन या कोना,
ठीक है।
फिर ये जानकारी ऊपर के लेवल पर जाती है, वहां के मॉड्यूल इन सिंपल पैटर्न को जोड़कर थोड़े कॉम्प्लेक्स पैटर्न पहचानते हैं, जैसे कई लाइनों से मिलकर एक अक्षर बन गया,
अक्षर, हाँ।
फिर अक्षर से शब्द, शब्द से वाक्य, और वाक्यों से पूरे विचार या कॉन्सेप्ट बनते हैं। ये जानकारी नीचे से ऊपर जाती है पहचानने के लिए, और ऊपर से नीचे भी आती है उम्मीद या भविष्यवाणी करने के लिए।
मतलब दिमाग लगातार उम्मीदें भी लगा रहा है कि आगे क्या होगा।
हाँ, ये टू वे ट्रैफिक है और ये लगातार चलता रहता है।
और यही हमें उनकी मेन थ्योरी PRTM पर लाता है, पैटर्न रिकॉग्निशन थ्योरी ऑफ माइंड।
बिल्कुल, ये किताब का दिल है। ये थ्योरी कहती है कि हमारा दिमाग हर पल लगातार यही कर रहा है। वो बाहर की दुनिया से जो भी जानकारी आ रही है, आंखों से, कानों से, त्वचा से, उसमें पैटर्न ढूंढता है।
पैटर्न ढूंढता है,
उन पैटर्न को याद रखता है, और फिर जो पैटर्न सीख लिए हैं उनके आधार पर भविष्यवाणी करता है कि आगे क्या होने वाला है या क्या दिखना सुनना चाहिए।
इसका कोई आसान सा उदाहरण दे सकती हैं?
हाँ, बिल्कुल। जैसे मान लीजिए आपने बचपन में एक बिल्ली देखी, एक पैटर्न, उसकी आवाज सुनी म्याओ, दूसरा पैटर्न, और उसे छुआ तो वो नरम लगी, तीसरा पैटर्न। आपका दिमाग इन सब को जोड़कर बिल्ली का एक पैटर्न बना लेता है।
ठीक है,
अगली बार जब आप सिर्फ म्याऊं की आवाज सुनेंगे तो आपका दिमाग फौरन भविष्यवाणी करेगा कि आसपास बिल्ली हो सकती है, शायद वो नरम भी होगी।
समझ गया, और ये पैटर्न बदलते भी रहते होंगे?
हाँ, बिल्कुल। हम जिंदगी भर नए पैटर्न सीखते हैं, पुराने पैटर्न को सुधारते हैं, या कभी कभी गलत पैटर्न भी सीख लेते हैं। ये सीखने की प्रक्रिया है।
तो कोड्सविल के हिसाब से ये लगातार पैटर्न पहचानना, याद रखना, भविष्यवाणी करना, यही सोचना है?
हाँ, उनके अनुसार सोचना यही प्रक्रिया है। ये कोई एक चीज नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला फ्लो है।
लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, अगर सब कुछ पैटर्न पहचानना ही है, तो फिर हमारी भावनाएं, हमारा डर, गुस्सा, खुशी, प्यार, ये सब कहाँ से आता है? ये भी पैटर्न है?
बहुत अच्छा सवाल है। कोड्सविल इसका भी जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि ये चीजें, मतलब भावनाएं और इच्छाएं, ये दिमाग के ज्यादा पुराने हिस्सों से आती हैं, विकास के क्रम में जो पहले बने थे।
जैसे?
जैसे लिम्बिक सिस्टम है, उसमें एमिग्डाला नाम का हिस्सा है। ये हिस्से हमारे बेसिक लक्ष्य तय करते हैं।
लक्ष्य? कैसे लक्ष्य?
जैसे अगर आपको कोई खतरा महसूस हुआ तो एमिग्डाला खतरे से बचो या भागो का सिग्नल या लक्ष्य देगा, या भूख लगी तो खाना ढूंढो का लक्ष्य।
अच्छा, तो ये पुराने हिस्से लक्ष्य सेट करते हैं, फिर नियोकॉर्टेक्स का क्या काम है?
हाँ, यहीं पर नियोकॉर्टेक्स की पैटर्न पहचानने वाली सुपर पावर काम आती है। उसे जब पुराने दिमाग से लक्ष्य मिलता है, जैसे खाना ढूंढो, तो नियोकॉर्टेक्स अपने सीखे हुए पैटर्न का इस्तेमाल करके उस लक्ष्य को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका ढूंढता है।
मतलब वो याद करेगा कि फ्रिज कहाँ है, या कौन से रेस्टोरेंट्स पास हैं, या खाना कैसे बनाना है।
बिल्कुल, तो पुराना दिमाग बताता है क्या करना है
व्हाट,
और नया दिमाग नियोकॉर्टेक्स पता लगाता है कैसे करना है हाउ।
ये तो दिलचस्प है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो बहुत इंसानी लगती हैं, जैसे प्यार, हास्य, क्रिएटिविटी। क्या ये भी बस पैटर्न्स का ही खेल है? ये सुनने में थोड़ा ठंडा मशीनी सा नहीं लगता?
हाँ, ये सवाल स्वाभाविक है। कॉजवील का तर्क है कि ये चीजें भी इसी जटिल पैटर्न रिकग्निशन सिस्टम से ही उभरती हैं। ये उसके इमर्जेंट प्रॉपर्टीज हैं।
इमर्जेंट प्रॉपर्टीज मतलब?
मतलब जैसे पानी के एक अणु में गीलापन नहीं होता, पर बहुत सारे अणु मिलकर गीलापन पैदा करते हैं, वैसे ही ये गुण सीधे तौर पर किसी एक मॉड्यूल में नहीं होते, बल्कि पूरे सिस्टम के जटिल इंटरैक्शन से पैदा होते हैं।
तो क्रिएटिविटी क्या हुई इस हिसाब से?
उनके अनुसार क्रिएटिविटी है पुराने सीखे हुए पैटर्न को नए, अनोखे और काम के तरीकों से जोड़ना। कुछ नया बनाना मतलब पुराने हिस्सों को नए ढंग से मिलाना।
और प्यार?
प्यार शायद किसी इंसान, चीज या विचार से जुड़े हुए बहुत सारे सकारात्मक पैटर्न का एक बेहद जटिल नेटवर्क है जो हमने समय के साथ अनुभवों से सीखा है।
और हास्य, मजाक कैसे काम करता है?
हास्य तब होता है जब हमारे दिमाग में किसी सिचुएशन को लेकर एक पैटर्न की उम्मीद होती है।
हाँ।
और फिर वो उम्मीद अचानक से एक मजेदार या अजीब या बेकनीदी तरीके से टूट जाती है, जैसे किसी जोक की पंचलाइन। दिमाग को जो उम्मीद थी वो नहीं हुआ, कुछ और हुआ, और ये सरप्राइज हमें हंसाता है।
तो उनके मुताबिक ये सब भी आखिर में कंप्यूटेशनल प्रक्रियाएं हैं?
हाँ, उनका यही मानना है, बस ये बहुत ज्यादा जटिल है।
ठीक है, थ्योरी तो समझ आ रही है, पर क्या वो ये भी बताते हैं कि इसे असल में कंप्यूटर में कैसे बनाया जाए?
हाँ बिल्कुल, किताब का एक हिस्सा इसी पर है। वो सिद्धांत से प्रैक्टिस पर आते हैं। वो कुछ खास तरह के गणितीय मॉडल का जिक्र करते हैं।
जैसे कुछ नाम याद है?
हाँ, जैसे हायरार्किकल हिडन मार्को मॉडल्स, यानी HHMS। अब ये नाम थोड़ा टेक्निकल है।
हाँ, थोड़ा है,
पर आसान भाषा में समझें तो ये ऐसे तरीके हैं जिनसे कंप्यूटर भी दिमाग की तरह परत दर परत पैटर्न पहचानना सीख सकते हैं। मतलब पहले सिंपल पैटर्न, फिर उनको जोड़कर कॉम्प्लेक्स पैटर्न,
जैसे नियोकॉर्टेक्स करता है।
बिल्कुल, हायरार्की वाली बात यहाँ भी लागू होती है। और वो उदाहरण देते हैं कि गूगल वॉइस सर्च या इमेज रिकग्निशन जैसी टेक्नोलॉजी में जो इतनी तरक्की हुई है।
हाँ, वो तो कमाल की है आजकल।
वो इसी तरह की सोच, इसी तरह के पदानुक्रमित पैटर्न पहचानने वाले मॉडल का नतीजा है। तो ये एक तरह से सबूत है कि ये अप्रोच काम कर रही है।
अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है और शायद सबसे विवादास्पद भी हो, चेतना, फ्री विल, पहचान।
हाँ, ये बड़े दार्शनिक सवाल हैं। कॉन्शियसनेस यानी चेतना, ये क्या है? कुर्जीविल इसे कोई रहस्यमयी आत्मा जैसी चीज नहीं मानते।
तो फिर क्या मानते हैं?
उनका कहना है कि चेतना भी एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। ये एक ऐसे सिस्टम का गुण है जो इतना जटिल हो कि वो दुनिया का और खुद का एक मॉडल बना सके, और फिर अपने ही विचारों के बारे में सोच सके, सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सके।
मतलब अगर कोई मशीन काफी कॉम्प्लेक्स हो जाए और खुद के बारे में सोचने लगे तो वो सचेत हो सकती है।
उनका तर्क यही है। वो कहते हैं कि अगर हम PRTM पर आधारित AI बनाएं जो काफी जटिल हो, तो वो खुद को सचेत बताएगी, और हमारे पास कोई ठोस तरीका नहीं होगा ये कहने का कि वो सचमुच सचेत नहीं है, सिर्फ नाटक कर रही है।
ये तो बड़ा अजीब सा विचार है।
है तो, और फिर आता है सवाल फ्री विल का, स्वतंत्र इच्छा।
हाँ, हमें तो लगता है कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं, अपनी मर्जी से।
बिल्कुल, ये अनुभव तो हम सबको होता है। कुर्जवील कहते हैं कि ये अनुभव एकदम वास्तविक है, लेकिन वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो शायद हमारे फैसले हमारे दिमाग की बेहद जटिल प्रक्रियाओं का नतीजा है।
मतलब वो पहले से तय हैं, या उनमें कुछ रैंडमनेस है?
हो सकता है वो पूरी तरह डिटर्मिनिस्टिक हो, मतलब कारण और प्रभाव की चेन, या फिर उनमें कुछ संभावना, प्रोबेबिलिस्टिक एलिमेंट हो। लेकिन क्योंकि सिस्टम इतना जटिल है और वो खुद पर विचार कर सकता है, इसलिए हमें स्वतंत्रता का अनुभव होता है।
तो अनुभव असली है, पर शायद असलियत कुछ और है।
कुछ ऐसा ही उनका मानना है। और तीसरा बड़ा सवाल, पहचान, आइडेंटिटी।
हाँ, वो न्यूरॉन बदलने वाला सवाल।
बिल्कुल, तो कुर्जवील के हिसाब से हमारी पहचान किसमें है? उनका जवाब है, हमारे सॉफ्टवेयर में।
सॉफ्टवेयर मतलब?
मतलब हमारी यादें, हमारी पर्सनालिटी, हमारी आदतें, हमारे सीखे हुए पैटर्न, ये सब जानकारी हमारे दिमाग में पैटर्न के रूप में स्टोर है। शरीर तो बस वो हार्डवेयर है जिसपे ये सॉफ्टवेयर चल रहा है।
वो नदी वाली एनालॉजी याद है मुझे।
हाँ, जैसे नदी का पैटर्न बना रहता है, पानी बदलता रहता है, वैसे ही हमारा मैं शायद इन पैटर्न की निरंतरता में है, ना कि शरीर के एटम्स में जो बदलते रहते हैं।
तो अगर ये पैटर्न ही हमारी पहचान है
तो फिर सैद्धांतिक रूप से उस पैटर्न को कॉपी किया जा सकता है।
कॉपी मतलब?
मतलब उसे किसी दूसरे मीडियम पर, जैसे कि एक बहुत पावरफुल कंप्यूटर पर ट्रांसफर किया जा सकता है।
माइंड अपलोडिंग?
हाँ, यही है माइंड अपलोडिंग का विचार, कि भविष्य में शायद हम अपने दिमाग का बैकअप ले पाएंगे या उसे किसी मशीन में ट्रांसफर कर देंगे और अमर हो जाएंगे एक तरह से।
ये सुनने में तो एकदम साइंस फिक्शन है।
लगता तो है, पर कर्ट्ज़वाइल इसे एक तार्किक संभावना मानते हैं जो उनकी लॉ ऑफ एक्सेलरेटिंग रिटर्न्स के हिसाब से शायद कुछ दशकों में मुमकिन हो।
तो अंत में वो फिर से अपनी उस थ्योरी पे आ जाते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है।
हाँ, वो कहते हैं कि कंप्यूटिंग पावर, डेटा और AI एल्गोरिदम्स इतनी तेजी से बेहतर हो रहे हैं कि शायद 2030 या 2040 के दशक तक हम इंसानी दिमाग की पूरी नकल कंप्यूटर पर बना लेंगे, पूरी सिमुलेशन।
और वो AI के खतरों के बारे में भी कुछ कहते हैं, लोग डरते भी तो हैं AI से।
हाँ, वो उन चिंताओं को भी एड्रेस करते हैं। वो मानते हैं कि जोखिम है, पर उनका नजरिया ज्यादातर आशावादी है। वो भविष्य में जैविक यानी हम इंसान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विलय की कल्पना करते हैं, एक हो जाने की। इसी को वो सिंगुलैरिटी कहते हैं।
सिंगुलैरिटी? तो ये तो काफी कुछ हो गया इस किताब में। अगर हमें कुछ मुख्य बातें निकालनी हो तो क्या होंगी?
मेरे हिसाब से पहली और सबसे जरूरी बात तो PRTM का सिद्धांत ही है।
हाँ, पैटर्न रिकॉग्निशन।
ये आइडिया कि दिमाग की सारी जटिलता शायद एक ही तरह के बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न पहचानने वाले एल्गोरिदम से आती है, ये दिमाग को समझने का एक शक्तिशाली फ्रेमवर्क देता है।
बिल्कुल। दूसरी बात?
दूसरी अहम बात है पदानुक्रम यानी हायरार्की का महत्व। बुद्धि परत दर परत बनती है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स। ये समझना AI बनाने के लिए भी जरूरी है और शायद सीखने सिखाने के लिए भी।
हाँ, ये शिक्षा वाली बात मुझे दिलचस्प लगी। भारत में हम अक्सर रटकर सीखने पर जोर देते हैं।
शायद पैटर्न बनाने और कनेक्शन देखने वाले तरीके ज्यादा फायदेमंद हो, है ना?
हो सकता है। तीसरी मुख्य बात क्या होगी?
तीसरा है मन को सॉफ्टवेयर मानने का विचार, कि हमारी पहचान हमारे शरीर से ज्यादा हमारे सूचना पैटर्न में है। ये बहुत गहरा विचार है।
हाँ, इसके निहितार्थ बहुत बड़े हैं, माइंड अपलोडिंग वगैरह।
चौथा है तकनीकी प्रगति की रफ्तार, कर्ट्ज़वाइल का लॉ ऑफ एक्सेलरेटिंग रिटर्न्स। ये हमें याद दिलाता है कि बदलाव बहुत तेजी से आ रहा है और हमें उसके लिए तैयार रहना होगा,
खासकर भारत जैसे देश के लिए जो इतनी तेजी से डिजिटल बन रहा है।
बिल्कुल। और पांचवा है चेतना और स्वतंत्र इच्छा पर उनका नजरिया, कि ये शायद रहस्यमय चीजें नहीं बल्कि जटिल कंप्यूटेशनल प्रक्रियाएं हैं जिन्हें समझा और शायद दोहराया भी जा सकता है।
ये भी काफी सोचने वाली बात है। किताब में कुछ ऐसी लाइनें या विचार भी हैं जो दिमाग में अटक जाते हैं?
हाँ बिल्कुल। जैसे वो कहते हैं, नियोकॉर्टेक्स का महान रहस्य उसकी एकरूपता है। ये हजारों अलग अलग मशीनों का संग्रह नहीं बल्कि एक शक्तिशाली एल्गोरिदम है जो बार बार दोहराया जाता है।
इसका मतलब है कि जटिलता के पीछे सादगी छिपी हो सकती है, अगर हम वो मूल एल्गोरिदम समझ लें
तो शायद दिमाग के कई राज खुल जाएं।
एक और जो मुझे याद है वो नदी वाला, हमारी पहचान जानकारी के उस पैटर्न की निरंतरता है जो हमारे मन का निर्माण करता है। जैसे नदी में पैटर्न बना रहता है भले ही पानी के अणु बदलते रहें।
ये एनालॉजी इतनी सटीक लगती है, यह हमें अपने शरीर से थोड़ा अलग होकर सोचने पर मजबूर करती है कि हम क्या हैं।
हाँ, और चेतना पे वो कहते हैं, चेतना कोई रहस्यमयी अविभाज्य गुण नहीं है, यह एक पर्याप्त जटिल प्रणाली से उत्पन्न होने वाली घटना है, विशेष रूप से एक ऐसा मन जो दुनिया में खुद का मॉडल बना सकता है और अपने विचारों के बारे में सोच सकता है।
ये चेतना को जादू टोने के दायरे से निकालकर विज्ञान के दायरे में लाने की एक कोशिश है, कि ये जटिलता का नतीजा है।
और आखिर में वो टेक्नोलॉजी की रफ्तार पर कहते हैं, एक बार जब कोई तकनीक सूचना प्रौद्योगिकी बन जाती है तो वह त्वरित लाभ के नियम के अनुसार तेजी से आगे बढ़ती है। मस्तिष्क रिवर्स इंजीनियरिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब सूचना प्रौद्योगिकियां हैं।
ये उनकी भविष्यवाणी और भरोसे को दिखाता है कि AI का विकास होकर रहेगा और तेजी से होगा।
तो इन सब विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है? कुछ प्रैक्टिकल बातें।
हाँ देखिये, AI बनाने वालों के लिए तो ये किताब सीधी गाइडलाइन देती है। पैटर्न पहचानो, हायरार्की बनाओ, आजकल जो डीप लर्निंग में हो रहा है उसमें इसकी झलक है भी।
और शिक्षा में?
शिक्षा में जैसे हमने कहा, ये रटने की बजाय समझने, कनेक्शन बनाने, पैटर्न ढूंढने पर जोर देने की बात करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स शायद ज्यादा बेहतर हों इससे।
हम अपनी निजी जिंदगी में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं शायद, अपनी समस्याओं को पैटर्न की तरह देखकर।
बिल्कुल, हम अपनी समस्याओं को छोटे पैटर्न में तोड़ सकते हैं या अपनी क्रिएटिविटी को ऐसे देख सकते हैं कि हम कैसे नए पैटर्न बना रहे हैं या पुराने पैटर्न को नए तरीकों से जोड़ रहे हैं।
और समाज के तौर पर?
समाज के तौर पर ये किताब हमें आने वाले AI युग के लिए तैयार करती है। ये हमें उन नैतिक सवालों पर सोचने को मजबूर करती है जिनके जवाब हमें जल्दी ढूंढने होंगे। मशीनें सोचने लगेंगी तो उनके अधिकार क्या होंगे, हमारी पहचान का क्या मतलब रह जाएगा। भारत में भी इन पर बात होनी चाहिए।
सही कहा। मेरे लिए इस किताब से सबसे बड़ा सबक ये है कि इंसान की सोच जो हमें इतनी खास और जटिल लगती है, वो शायद एक अपेक्षाकृत सरल दोहराए जाने वाले नियम से पैदा हुई हो सकती है। ये दिमाग को थोड़ा कम रहस्यमय बनाता है और ज्यादा समझने लायक।
और मेरे लिए जो सबसे चौंकाने वाला या गहरा विचार है वो मन को सॉफ्टवेयर मानने का। ये सोचना कि हमारा अस्तित्व, हमारी पहचान शायद इस जैविक शरीर से पूरी तरह बंधी हुई ना हो, ये संभावनाओं और सवालों का एक बिल्कुल नया दायरा खोलता है।
हाँ, भविष्य कैसा होगा ये सोचना ही रोमांचक और थोड़ा डरावना भी है।
है तो?
तो हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। अगर आपकी पहचान, जैसा कज़विल कहते हैं, सिर्फ जानकारी का एक पैटर्न है, तो आपके उस पैटर्न का वो कौन सा हिस्सा है जो आपको लगता है कि वो आपको सचमुच आप बनाता है? क्या वो आपकी यादें हैं, आपकी भावनाएं, आपके सिद्धांत या कुछ और? और क्या आपको लगता है कि उस पैटर्न को कभी पूरी तरह से कॉपी किया जा सकेगा? सोचिएगा जरूर।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकतर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।